गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धाम जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय हो जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज राधा जय नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य नंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा। तो चूंकि गौर पूर्णिमा बहुत निकट आ रही है तो हम लोग गौर कथा सुन रहे हैं चैतन्य चरितामृत से। तो आज का जो प्रसंग है मध्य लीला का अध्याय तीसरा है। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया है और संन्यास लेने के बाद किस प्रकार से अद्वैताचार्य के घर में उन्होंने लीला की उसका बहुत विस्तृत वर्णन है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय श्री चैतन्य
लगता है कोई है ही नहीं। सब लोग बोलिए जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य कृष्ण के प्रति प्रेम बस वृंदावन जाना चाहते थे। संन्यास लिया और तुरंत वृंदावन भागना चाहते थे, किंतु भ्रम के कारण राह देश में घूमते रहे, क्योंकि उनको रास्ता दिशाओं का ही ज्ञान नहीं है। तो वृंदावन जाने के चक्कर में वे कहीं और घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें रास्ते का ही कुछ पता नहीं है। बाद में शांति पर पहुंचे, वहां भक्तों के साथ आनंद पूर्वक रहे। मैं उन श्री चैतन्य देव को सादर नमस्कार करता हूँ। न्यास संविधायो प्रणयोथ गौरो वृंदावनम गंतु मना भ्रमाद्यहा, राडे भ्रमन शांतिपुरी ममित्वा लास भक्त रे तम नतोस्मि। श्री चैतन्य की जय हो, श्री नित्यानंद की जय हो, श्री अद्वैत की जय हो, श्री वास आदि चैतन्य के समस्त भक्तों की जय हो। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। 24वें वर्ष के अंत में माघ मास के शुक्ल पक्ष में श्री चैतन्य ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। 26 वत्सर शेष जय माघ मास, तार शुक्ल पक्षे प्रभु करिला संन्यास। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम में वृंदावन के लिए चल पड़े, किंतु भूल से लगातार 3 दिनों तक राण देश में भ्रमण करते रहे। संन्यास करी प्रेम वैसे चलीला वृंदावन, राण देश से 3 दिन करीला भ्रमण। राण देश में भ्रमण करते समय श्री चैतन्य ने भावावेश में ये श्लोक सुनाया। श्लोक पढ़ी प्रभु भावे रे आवेशे, भ्रमिते पवित्र कैलास सब राण देशे। कि श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ता पूर्वक लगकर मैं अज्ञान के समुद्र को पार कर जाऊंगा, जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने समुद्र को पार किया है, उसी प्रकार से मैं भी। एताम सास्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्वतमेर महद्भी अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमोमुतुं तमोमुकुंदांग्रेन सेवयैव। श्री चैतन्य ने इस श्लोक के तात्पर्य का अनुमोदन भिक्षुक के द्वारा भगवान मुकुंद की सेवा में लगने के संकल्प के कारण किया। उन्होंने इस श्लोक को अपनी सहमति दी। ये श्लोक बहुत ही उत्तम है। प्रभु कहे साधु ए भिक्षु रे वचन, मुकुंद सेवन व्रत कैला निधारण। संन्यास लेने के बाद मुकुंद की सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। मुकुंद की सेवा करने से मनुष्य अवश्य ही भव बंधन से मुक्त हो जाता है। परात्म निष्ठा मात्र वेश धारण, मुकुंद सेवाए है संसार तारण। संन्यास स्वीकार करने के बाद श्री चैतन्य ने वृंदावन जाने और वहाँ केवल मुकुंद की सेवा में लगने का निश्चय किया। सेवे से कैले ऐबे वृंदावन किया, कृष्ण ने सेवण करी निभृते बसिया। जब श्री चैतन्य वृंदावन के रास्ते में थे, तब उन्हें प्रेम उन्माद हुआ और उन्हें ज्ञान नहीं रहा कि किस दिशा में जा रहे हैं, और दिन है या रात है। ऐसा प्रेम एता बलि चले प्रभु प्रेम उन्मादेर चिन्ह, दिग विदिग ज्ञान नहीं कि बारात्रि दिन। जब श्री चैतन्य वृंदावन की ओर जा रहे थे, तब नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर और मुकुंद प्रभु उनके पीछे पीछे चल रहे थे। 3 लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, कौन? नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर और मुकुंद। नित्यानंद आचार्य रत्न मुकुंद तीन जन, प्रभु पाछे पाछे तेने करे न गमन। जब श्री चैतन्य राण देश से होकर जा रहे थे, तो जो भी उन्हें देखता वो हरि हरि कहता था। जो ही महाप्रभु के साथ कीर्तन करते, उनके सारे दुख विनष्ट हो जाते थे। जय जय प्रभु देखे सही सही लोक, प्रेमा बेसे हरि बले खंडे दुख शोक। श्री चैतन्य को जाते देखकर सब गोप बालक उनके साथ चलने लगे, उच्च स्वर से हरि हरि पुकारने लगे। गोप बालक सबे प्रभु, गोप बालक सबे प्रभु के देखिया, हरि हरि बलि डाके उच्चे करिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी गोप बालकों को हरि हरि उच्चारण करते सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। वे उनके पास गए, उनके सिर पर हाथ रखा और बोले, इसी तरह से कीर्तन करते रहो। हरि बोल। सुनीता सबार निकट गीला गौर हरि, बले 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 सबार सिरे हस्ते धरी। इस तरह श्री चैतन्य ने उन सबको ये कहते हुए आशीर्वाद दिया कि सभी भाग्यवान हो। उन्होंने इस तरह उनकी प्रशंसा की, और चूंकि उन लोगों ने हरि नाम कीर्तन किया था इसलिए महाप्रभु ने अपने आप को कृतार्थ समझा। तसा बार स्तुति करे तो मारा भाग्यवान, कृतार्थ कारी ले मोरे सुनिया हरि नाम। सब बालकों को एकांत में बुलाकर और एक कहानी सुनाते हुए नित्यानंद प्रभु ने उन सबको समझाया, बच्चों को समझाया। किसने? नित्यानंद प्रभु ने समझाया। गुप्तता सा भाग्य आनी ठाकुर नित्यानंद, सिखाई ला सब कार्य करिया प्रबंध। यदि श्री चैतन्य तुम लोगों से वृंदावन का रास्ता पूछे तो उन्हें गंगा नदी के किनारे का रास्ता दिखला देना। नित्यानंद जो है बच्चों को सिखा रहे हैं कि वृंदावन का रास्ता पूछेंगे ना श्री चैतन्य, तो ये रास्ता दिखा देना उनको, गलत रास्ता दिखा देना। वृंदावन पथे प्रभु पूछे न तुम्हारे, गंगा तीर पथे तबे दिखाई है तारे। जब श्री चैतन्य ने गोप बालकों से वृंदावन का रास्ता पूछा तो उन बालकों ने गंगा के किनारे वाला रास्ता बतला दिया और महाप्रभु भावावेश में उसी रास्ते चल पड़े, वृंदावन समझ के कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तबे प्रभु पूछी लेन सुन शिशुगण, कहा देखी कौन पथे जाब वृंदावन। शिशु सब गंगा तीर पथे देखाइल, से पथे आवे से प्रभु गमन करिल। जो ही महाप्रभु गंगा के किनारे किनारे चल पड़े तो ही नित्यानंद प्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को तुरंत अद्वैत आचार्य के घर जाने के लिए कहा, तैयारी करो अद्वैत आचार्य के घर में तैयारी करो। आचार्य रत्न रे कहे नित्यानंद गोसाई, शीघ्र जाए तुम्हें अद्वैत आचार्य रे ठाई। नित्यानंद ने उनसे कहा कि मैं श्री चैतन्य को शांतिपुर में गंगा के तट पर ले आऊंगा, आप अद्वैत आचार्य से कहें कि वे सावधान होकर एक नौका लेकर किनारे पर रहे। प्रभु लय जाब आमी ताहारे मंदिरे, सावधान रहें जेने नौका ले या तीरे। नित्यानंद ने आगे कहा उसके बाद मैं अद्वैत आचार्य के घर जाऊंगा और आप नवद्वीप जाकर माता सची को अन्य सब भक्तों को लेकर के आ जाना, वहीं पर सची माता को भी ले आना। तबे नवद्वीपे तुम्हें करी है गमन, सची सा लैया आए सब भक्त गण। आचार्य रत्न को अद्वैत आचार्य के घर भेजकर नित्यानंद श्री चैतन्य के सामने आए और अपने आने की सूचना दी। तारे पठाई या नित्यानंद महाशय, महाप्रभु आगे आसी दिले परे चय। सब श्री चैतन्य भावावेश में थे, उन्होंने पूछा नित्यानंद कहाँ जा रहे हैं। नित्यानंद ने उत्तर दिया वे तो महाप्रभु के साथ वृंदावन जा रहे हैं। किस तरह का देखो ड्रामा कर रहे हैं। प्रभु कहे श्रीपाद तोमार कोथा के गमन, श्रीपाद कहे तोमार संगे जाब वृंदावन। जब श्री चैतन्य ने नित्यानंद से पूछा अब वृंदावन कितनी दूर है, नित्यानंद ने उत्तर दिया देखिए ये रही यमुना नदी। प्रभु कहे कत दूरे आछे वृंदावन, तेहो कहेन करे ए यमुना दर्शन। ये कहकर नित्यानंद उन्हें गंगा नदी के पास ले गए और श्री चैतन्य ने भावावेश के कारण गंगा को ही यमुना के रूप में स्वीकार कर लिया। एते बाली अनिल तारे गंगा सन्निधाने, आवे से प्रभु रहिला गंगा रे यमुना ज्ञाने। महाप्रभु ने कहा ओह कितना सौभाग्य है आज मुझे यमुना के दर्शन हुए हैं। इस तरह गंगा को ही यमुना मानकर उन्होंने उसकी स्तुति प्रारंभ कर दी। अहो भाग्य यमुना रे पाई लो दर्शन, एते बाली यमुना रे करे स्तवन। हे यमुना, तुम आनंद मैं दिव्य जल हो जो नंद महाराज के पुत्र को प्रेम प्रदान करती हो। तुम वैकुंठ लोक के जल के समान हो क्योंकि तुम हमारे पूरे जीवन में किए गए पापों को नष्ट करने वाली हो। तुम संसार के लिए सभी मंगल की जननी हो। हे सूर्यदेव की पुत्री, तुम अपने पुण्यों से हम सबको शुद्ध कर दो। सदानंद भानो सदानंद सुनो पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री अघान अम्लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्री क्रियान्नो वपुर मित्र पुत्री। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद श्री चैतन्य ने नमस्कार करके गंगा नदी में स्नान किया। क्या मान करके? जमुना जी को मान कर। उस समय उनके पास एक ही कौपीन था, दूसरा कोई वस्त्र नहीं था। ये तबली नमस्कारी कैला गंगा स्नान एक कॉपी नाई द्वितीय परिधान। जब श्री चैतन्य वहां दूसरे वस्त्र के बिना खड़े थे हैं, तब अद्वैत आचार्य अपने साथ नया कॉपीन और बाहरी वस्त्र लेकर नौका से वहां पर आए। हे निकाले आचार गोसाई नौका ते चढ़िया आए नूतन कौपीन बहिर्वास लैया। देखो इतने मतलब बेखबर हैं, अब स्नान कर लिया है, कपड़ा है ही नहीं, दूसरा सूखा कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, स्नान कर लिया है। आचार्य अपने घर से लेके आए इनके लिए कौपीन। आचार्य आकर महाप्रभु के सामने प्रस्तुत हुए, उन्हें नमस्कार किया। उन्हें देखकर महाप्रभु को संदेह होने लगा, बड़ा संदेह हो कि वृंदावन में ये कैसे आ गए। आगे आचार्य आसी रहिला नमस्कारी आचार्य देखी बले प्रभु मने संशय करी। महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य से पूछा, आप यहाँ कैसे आए, आपको कैसे पता चला कि मैं वृंदावन में हूँ। तुमिता आचार्य गोसाई यथा के ने अला आमी वृंदावन तुम्हें के मते जानीला। कि मैं वृंदावन में हूँ आपको कैसे मालूम हुआ, आपके कैसे आ गए वृंदावन। अद्वैताचार्य ने श्री चैतन्य से ये कहकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी, आप जहाँ हैं वही वृंदावन है। ये तो मेरा परम सौभाग्य कि आप गंगा नदी के तट पर आए हैं। आचार्य कहे तुम्हें जहाँ से वृंदावन मोर भाग्य गंगा तीरे तुमार आगमन। तब श्री चैतन्य ने कहा, नित्यानंद ने मुझे धोखा दिया है, वो मुझे गंगा के तट पर ले आए और मुझे बताया कि ये यमुना है। प्रभु कहे नित्यानंद हमारे वंचीला गंगा के आने मोरे जमुना कहिला। तब श्री चैतन्य ने नित्यानंद पर धोखा देने का आरोप लगाया कि मुझे धोखा दिया। तो अद्वैत आचार्य ने कहा, नित्यानंद प्रभु ने आपसे जो कुछ कहा है वो झूठ नहीं है, आपने सचमुच अभी यमुना जी में ही स्नान किया है। अब देखो एक कारण बता रहे हैं कि हाँ ये भी नित्यानंद ने कहा जो सही कहा। आचार्य कहे मिथ्या नहे श्रीपाद वचन जमुना ते स्नान तुम्ही करीला एखन। अद्वैत आचार्य ने समझाया उस स्थान पर गंगा यमुना दोनों साथ साथ बहती हैं, प्रयाग से तो एक साथ होंगे, पश्चिम की ओर यमुना है और पूर्व की ओर गंगा है, जो मिली ना तो जमुना जी की धारा इधर है और गंगा की धारा उधर है, तो आप जिस तरफ स्नान करें वो जमुना जी की धारा है। गंगा जमुना बहे हैया एक धार पश्चिम यमुना बहे पूर्व गंगा धार। फिर अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की कि यमुना नदी में स्नान करने के कारण आपका कौपीन गीला हो गया है, अतः अपना कौपीन बदल करके सूखा कौपीन पहन लीजिए। पश्चिम धारे जमुना बहे तहां कैले स्नान आद्र कौपीन छाणी शुष्क कर परिधान। अद्वैत आचार्य ने कहा, किस प्रेम के आवेश में आप 3 दिन उपवास करते आ रहे हैं, ना तो कपड़ा है उनके पास कुछ पहनने के लिए और ना भोजन, 3 दिन आपने कुछ खाया नहीं है, किस प्रेम में ऐसे आवेश। अतः मैं आपको अपने घर पर भिक्षा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए भोजन करिए। 3 दिन से आपने भोजन भी नहीं किया, आपको होश ही नहीं है। प्रेमावेश 3 दिन आशे ओ पवास आजी मोर घरे भिक्षा चले मोर बास। अद्वैत आचार्य ने कहा, मैंने अपने घर में मुट्ठी भर चावल पकाया है, इस बात पर आएंगे ना भिक्षा के नाम पर। अगर कहेंगे मैंने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं तो सन्यासी नहीं आएगा, है ना। मैंने मुट्ठी भर चावल बनाया है और तरकारियां बहुत सादी हैं, कोई व्यंजन नहीं है, थोड़ा सूप है, कुछ साग है, ज़्यादा नहीं है और भिक्षा है,
रूखा सूखा
है ना, ये कहा एक मुष्टि अन्न मोई करी यहाँ छोपाक सूखा रूखा व्यंजन कैलो स्व पे आ रसाक। ये कहकर अद्वैत आचार्य उन्हें नाव में बैठाकर अपने घर ले आए। वहां पर अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के चरण धोए और इस प्रकार भीतर भीतर परम आनंदित हुए। क्या अवसर प्राप्त हो गया है, इनको धोखा दे करके अपने घर ले आए। ये ते बाली नौकाए चढ़ाइया अनिल निज घर पाद प्रक्षाल कैला आनंद अंतर। सर्वप्रथम अद्वैत आचार्य की पत्नी ने सारे पकवान बनाए और स्वयं अद्वैत आचार्य ने प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु को अर्पित की। प्रथमे पाक करी आछेन आचार्याणी विष्णु समर्पण कैला आचार्य आपनी। सारे पकाए गए भोग के तीन बराबर भाग किए गए। एक भाग कृष्ण को अर्पित करने के लिए धातु की थाली में सजाया गया। तीन अठाई भोग बड़ा एल समय करी कृष्णेर भोग बड़ा एल धातु पात्रो परी। और तीन भागों में से एक भाग धातु की थाली पर रखा गया और शेष दो भाग केले के पत्तों पर रखे गए। ये पत्ते बीज से विभाजित नहीं थे, मतलब केले के पत्ते होते हैं ना फटे होते हैं, ये फटे हुए पत्ते नहीं थे। और ऐसे केले के वृक्ष से ये पत्ते लिए गए थे जिनमें कम से कम 32 केले के गुच्छे लगे हों। तो बहुत बड़ा पत्ता होता है, 32 केले के गुच्छे वाला केला हो कितना बड़ा पत्ता होगा। और दोनों पत्तों में व्यंजन सुंदर ढंग से सजाए गए थे। 32 आठिया कलार अंगठिया पाते दोई ठाई भोग बड़ा एले भाल मते। और अच्छी प्रकार से पके चावल का ढेर अत्यंत सुंदर दाने वाला था और बीच में गाय के दूध से बनाया गया पीले रंग का घी था। चावल के ढेर के चारों ओर केले के पेड़ों की छाल से बने पात्र थे जिनमें तरह तरह की तरकारियां और मूंग की दाल थी। मध्य पीत घृत सिक्त शाल्यान्य स्तूप चारे देके व्यंजन ढोंगा आरमुद्ग सूप। पकी तरकारियों में पटोला सीताफल मानकचू और अदरक के टुकड़ों और विभिन्न प्रकार की पालक से बना सलाद था। आशाद्र के वास्तु के साक विविध प्रकार पटोल कुछ मान्य बड़ी मानकचू आर। सभी प्रकार की तरकारियों के साथ सुखता करेला मिला था जो अमृत के स्वाद को मात करने वाला था। कड़वे और चरपरे सुखता पांच प्रकार के थे। चई मरीच सुक्त दिया सब फल मूले अमृत निंदक पंच विधे तिक्त झाले। अब देखो अगर ऐसे कहते कि मैंने इतना बनाया है तो वो खाने के लिए नहीं आएंगे सन्यासी हैं, भिक्षा है रूखा सूखा है कुछ है? और बनाया कितना विविध तरकारियों में नीम की ताजी मुलायम पत्तियों को बैगन के साथ तला गया, पटोल फल को फूल बड़ी के साथ तला गया, कुष्मांड मान चाकी नामक व्यंजन भी था, कोमल निम्न पत्र सहा भाजा वार्ता की पटोल फूल बड़ी भाजा कुष्मांड मान चाकी। नारियल के गूदे दही और मिश्री से बना व्यंजन बहुत मीठा था। दूध में पकाए गए सीताफल और केले के फूलों की सब्जी प्रचुर मात्रा में थी। नारिकेल सस्य छाना सरकरा मधुर मोचा घंट दुग्ध कुष्मान सकल प्रचुर। मीठी और खट्टी चटनी में तैयार की गई छोटी टिक्कियां और 5-6 तरह के खट्टे व्यंजन थे। सारी तरकारियां इतनी बनाई गई थी कि वहां पर सारे लोग प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकें। मधुर अम्ले बड़ा अम्लादि पांच छह सकल व्यंजन कैला लोके जत है। मूंग की दाल के नरम बड़े पके केले से बने नरम बड़े उड़द की दाल से बने नरम बड़े तरह तरह की मिठाइयाँ खीर पोली नारियल से बना व्यंजन और सभी प्रकार के बड़े थे। मुद्ग बड़ा काल बड़ा मुद्ग बड़ा कला बड़ा मांस बड़ा मिष्ट खीर पोली नारियल जते पिठा इष्ट। सारी तरकारियाँ केले के ऐसे वृक्षों के पत्ते से बने दोनों में परोसी गई थी जिनमें कम से कम केले के 32 गुच्छे लगे। ये दोनों काफी मजबूत और बड़े थे, इधर इधर हिलने डुलने वाले नहीं थे, ना ही तिरछे होने वाले थे। दोना तिरछा हो जाता सब गिर जाता है, ऐसे दोने नहीं थे, केले के पत्ते के दोने थे और खूब बड़े बड़े थे, ना अंदर से कुछ लीकेज होगा ना जो है टेढ़ा होगा दोना। बत्तीसा आठिया कलार ढोंगा बड़े बड़े चले हाले नाही ढोंगा अति बड़े दड़े। भोजन करने के तीन स्थानों के चारों ओर तरह तरह की तरकारियों से भरे 102 सोचिए 100 प्रकार की तरकारियां हैं। क्या भोजन दोने दोने में 100 प्रकार की तरकारियां। 50 ढोंगा व्यंजने पूरिया तीन भोग आसे पासे राखे ले धरिया। सभी तरकारियों के चारों ओर घी से मिश्रित खीर रखी थी। इसे नए मिट्टी के बर्तनों में रखा गया था। खीर को मिट्टी के बर्तनों में रखा गया। अच्छी तरह से गाढ़े उबले दूध से भरे मिट्टी के बर्तन तीनों स्थानों पर रखे गए थे। तीन हिस्से बनाए थे जो धातु की थाली में कृष्ण को अर्पित करने के लिए भोग था और दो जो है केले के पत्तों में चैतन्य को और नित्यानंद को भोजन कराने के। सघृत पाया से नव मृत कुंडी का भरिया तीन पात्र खाना वर्त दुग्ध राखे धरिया। अन्य व्यंजनों के अतिरिक्त दूध में बना और केले से मिला चिवड़ा और दूध में पकाया सफेद सीताफल था। वहां पर उपस्थित सभी व्यंजनों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। दुग्ध चेड़ा काला आर दुग्ध लकलकी जते के कारे लेता कहते ना शकी। दोनों स्थानों पर दही और संदेश और केले से बना एक अन्य व्यंजन मिट्टी के पात्रों में भरकर रखा हुआ था। मैं उन सबका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। दो पासे धारिल सब मृत कुंडी का भारी चापा काला दधी संदेश कहते ना पारी। पके चावल और सारी तरकारियों के ढेर के ऊपर तुलसी की मंजरियाँ थीं। सुगंधित गुलाब जल से भरे बर्तन भी रखे थे। अन्य व्यंजन ऊपर ही दिल तुलसी मंजरी तीन जल पात्र शोभा से जल भरी। तीनों आसनों पर मुलायम कपड़े बिछे थे। इस तरह कृष्ण को सारी भोग सामग्री अर्पित की गई। उन्होंने इसे बड़े मन से ग्रहण किया। तीन शुभ्र पीठ तार ओपारी बसन यही रूपे साक्षात कृष्ण कराए ले भोजन। भोग अर्पित करने के बाद भोग आरती संपन्न की। अद्वैत प्रभु ने दोनों भाइयों चैतन्य और नित्यानंद को आरती देखने के लिए बुलाया। दोनों प्रभु वहां उपस्थित सारे लोग आरती देखने आए। आरती रे काले दोई प्रभु बोलाइल प्रभु संग सब आसी आरती देखिल। मंदिर में अर्चा विग्रहों की आरती हो चुकने के बाद कृष्ण को शयन कराया। तब अद्वैताचार्य श्री चैतन्य से कुछ निवेदन करने के लिए आगे आए। आरती करे या कृष्ण कराले शयन आचार्य आसी प्रभु रे तब कैला निवेदन। श्री अद्वैत प्रभु ने कहा हे प्रभु कृपया इस कमरे में चलें। तब श्री चैतन्य और नित्यानंद दोनों भाई प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। गृह रे भीतरे प्रभु करो ने गमन दोई भाई आयला तब करीते भोजन। जब श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रसाद लेने आए तो उन्होंने मुकुंद और हरिदास को अपने साथ चलने के लिए बुलाया। किंतु मुकुंद और हरिदास दोनों ने हाँ जोड़कर कहा। मुकुंद हरिदास दोई प्रभु बोलाइल जोड़ हाथे दोई जन कहते लागिल। मुकुंद हरिदास हाँ जोड़ करके क्या बोले हे प्रभु मुझे कुछ काम करना शेष है बाद में मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा अतः आप दोनों प्रभु अब कमरे के भीतर जाएं। आप दोनों जाइए। चैतन्य नित्यानंद को कह रहे हैं मुकुंद कहे मोर किछु कृत्य ना ही सरे पाछे मई प्रसाद पामू तुम ही जाए घरे। हरिदास ठाकुर ने कहा मैं बहुत पापी अधम हूँ मैं बाहर ही प्रतीक्षा करते हुए बाद में एक मुट्ठी प्रसाद लूंगा। हरिदास ठाकुर ने कहा मैं आपके साथ नहीं लूंगा क्यों बहुत पापी हूँ अधम हूँ मैं इंतजार करूंगा बाद में जो बचेगा एक मुट्ठी उच्छिष्ट जूठा मैं खाऊंगा। हरिदास कहे मोई पापिष्ठ अथम बाहिरे एक मुष्ठी पाछे करी मो भोजन। अद्वैताचार्य अपने साथ नित्यानंद और चैतन्य को कमरे के भीतर लाए जहाँ दोनों प्रभुओं ने प्रसाद की व्यवस्था देखी। विशेषकर चैतन्य अत्यधिक प्रसन्न हुए। दुई प्रभु लैया आचार्य गेला भीतर घरे प्रसादे देखिया प्रभु आनंद अंतरे। श्री चैतन्य ने कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले भोजन के पकाने की सारी विधियों का अनुमोदन किया। इतने प्रसन्न हुए उन्होंने कहा मैं हृदय से कहता हूँ कि जो कोई कृष्ण को इतना अच्छा भोजन अर्पित कर सकता है उसके चरण कमलों को मैं जन्म जन्मांतर अपने मस्तक पर धारण करना चाहता हूँ। चैतन्य ये समझे नहीं कि मेरे लिए है, क्या समझे, ये कृष्ण के लिए इतना अच्छा भोग सजाया है। तो कहते हैं जिसने इतना अच्छा भोग सजाया कृष्ण के लिए, उसके चरणों को तो मैं अपने जन्म जन्मांतर मस्तक पर धारण करना चाहता हूँ। ऐसे अन्न जे कृष्ण के करा है भोजन, जन्मे जन्मे सेरे धरो ताहार है चरण। जब श्री चैतन्य कमरे में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने भोजन के तीन भाग देखे, तो ये समझा कि तीनों कृष्ण के लिए हैं। वो नहीं समझे कि एक उनके लिए, एक नित्यानंद के लिए और एक कृष्ण के लिए। किंतु वे अद्वैत आचार्य के मन भाव मनोभाव को नहीं समझ पाए। प्रभु जाने तीन भोग, कृष्ण रे नैवेद्य, आचार्य रे मन कथा न है प्रभुर वेद्य। श्री चैतन्य ने कहा चलो इन तीनों स्थानों में बैठकर हम प्रसाद ग्रहण करें। किंतु अद्वैत आचार्य ने कहा मैं प्रसाद का वितरण करूंगा। तो वो बोले हम चलो तीनों लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे दूसरे स्थान में, ये तो कृष्ण को भोग लग रहा है। प्रभु बोले वैसे तीन करिए भोजन, आचार्य कहे आमी करिबे परिवेशन। श्री चैतन्य ने सोचा कि तीनों थालियां वितरण करने के लिए हैं, अतः उन्होंने ये कहते हुए और दो केले के पत्ते मांगे, हमें थोड़ी तरकारी चावल दे दीजिए, और दो केले के पत्तों में हमें थोड़ी तरकारी चावल दे दीजिए। कौन स्थाने बसिव आर आने दो पात, अल्प करी आने ताहे देह व्यंजन भात। अद्वैत आचार्य ने कहा कृपया इन आसनों पर बैठिए। उन्होंने दोनों के हाथ पकड़कर इनको बैठाए, इधर बैठो। आचार्य कहे वैसे तो हैं पिंडी रे ऊपर हाथे धरी बसाइन दुहारी। श्री चैतन्य ने कहा सन्यासी के लिए इतनी तरह के व्यंजन ग्रहण करना उचित नहीं है, यदि वो ऐसा करता है तो फिर अपनी इंद्रियों को किस तरह बस में रख सकता है। प्रभु कहे सन्यासी रे भक्ष्य नए उपकरण, यह खैले कैसे है इंद्रिय वारण। जब श्री चैतन्य ने पहले से परोसे हुए भोजन को ग्रहण नहीं किया तो अद्वैत आचार्य ने कहा कृपया अपना छल त्यागी है, ये सब छल कपट छोड़ो। किसने कहा? अद्वैत आचार्य ने कहा अपना छल कपट छोड़ो। हाँ? मैं जानता हूँ आप कौन हो, मैं आपके द्वारा सन्यास लेने के रहस्य को भी जानता हूँ। आचार्य कहे छाड़े तुम्हें आप नारे छुरी, आमे सब जाने तुम्हार सन्यासेर भारी भूरी। अद्वैत आचार्य ने चैतन्य से प्रार्थना की कि वे अपनी चतुराई छोड़ करके भोजन करें। इस पर महाप्रभु उत्तर दिया मैं सचमुच इतना भोजन नहीं खा सकता। भगवान जो है अपनी भोजन कर रहा छाड़ बचन चातुरी, प्रभु कहे एत अन्न खाई थे न पारी। तब अद्वैत आचार्य ने महापुरुष अनुरोध किया कि बहाना छोड़कर प्रसाद ग्रहण करो, बहाना सब बंद करो अपने, खाओ प्रसाद, अगर पूरा नहीं खा सकते तो शेष भाग खाली में पड़ा रहने देना, जो नहीं खाना है तो छोड़ देना। लेकिन भगवान अपना जूठा नहीं छोड़ना चाहते, उन्होंने कहा कि नहीं आपको जो खाना खा लो बाकी झूठा छोड़ देना। आचार्य बले अकपटे करह आहार, यदि खाइते न पार पाते रही बेक आर। तब चैतन्य ने कहा मैं इतना भोजन नहीं खा सकूंगा, और सन्यासी का धर्म नहीं कि वो जूठन छोड़े, इतना तो मैं खा नहीं सकता, और जूठन छोड़ना भी धर्म नहीं है सन्यासी का, तो मुझे निकाल करके दे दो थोड़ा। प्रभु बले एत अन्न नारी बे खाई ते, सन्यासी रे धर्म नहीं उच्च राखी ते। अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा जगन्नाथपुरी में भोजन करने का उदाहरण दिया कि जगन्नाथ है और आप तो अभिन्न है, जगन्नाथपुरी में आप रोज 54 बार खाते हो, है, और हर बार सैकड़ों बर्तन भोजन के आप ग्रहण करते हो, है ना, तो ये आप हमारे साथ में क्यों कपट कर रहे हो। आचार्य भले नीला चले खाओ चो अन्य बार, एक बार अन्य खाओ सत्य सत्य भार। आचार्य ने कहा तीन जन जितना खाते हैं वो आपके एक ग्रास के बराबर भी नहीं है, तीन लोगों का भोजन आपके ग्रास के बराबर भी नहीं है। इस गणना के अनुसार ये भोजन आपके 5 ग्रास भी नहीं है, जो मैंने दिया है 5 ग्रास भी नहीं है ये आपके लिए, जगन्नाथपुरी में जितना खाते हो उस हिसाब से। तीन जनार भक्ष्य पिंड तुम्हारे एक ग्रास, तार लेखा ए अन्न न है 5 ग्रास। अद्वैत आचार्य ने कहा ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे घर आए हैं, कृपया बातें मत बनाइए, बातें छोड़कर भोजन करना प्रारंभ कीजिए। मोर भाग्य मोर घरे तुमार आगमन, छाड़ा है चातुरी प्रभु करा है भोजन। ये कहकर अद्भुत आचार्य ने दोनों प्रभुओं को हाथ धोने के लिए जल दिया, तब दोनों प्रभु बैठ गए और हंसते हुए प्रसाद ग्रहण करने लगे। ये ते बलि जल दिले दुई गोसाई हाते, हासिया लागी ला दो भोजन करीते। नित्यानंद ने कहा, अब नित्यानंद उल्टा बोले, चेतन तो बोले बहुत ज्यादा है मैं नहीं खा सकता, और नित्यानंद उल्टा बोले, क्या बोले, मैं लगातार 3 दिनों से उपवास करता रहा, मुझे आशा थी आज मेरा उपवास टूटेगा। उल्टा बोल रहे हैं नित्यानंद ने, कहे कई लोग तीने उपवास, आज ही पारण करते छिले बड़ आस। आज सोचा था कुछ कुछ पारण होगा, थोड़ा मिलेगा, तो कुछ भी नहीं है। जहाँ चेतन सोच रहे थे कि भोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, नित्यानंद सोचे एक ग्रास भी नहीं है, 3 दिन से उपवास कर रहा हूँ और पूरी आशा थी आज अपना उपवास भंग होगा। हाँ, उन्होंने कहा यदि भी आचार्य ने मुझे आज खाने के लिए बुलाया है, किंतु आज भी मेरा उपवास है, इतने थोड़े भोजन से मेरा आधा पेट भी नहीं भरेगा। आज ही उपवास हैला, आचार्य ने मंत्रण है, अर्ध पेट ना भरे बे एक रासिक अन्य। अद्भुत आचार्य ने उत्तर दिया, आप तो सन्यासी हो, आप तो तैर्थिक सन्यासी हो, कभी फल खाते हो, कभी कंदमूल खाते हो, कभी केवल उपवास करते हो। आचार्य कहे तुम ही हो तैर्थ के सन्यासी, कभू फल मूल खाओ कभू उपवासी, और मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में आए हो, आपको जो थोड़ा बहुत भोजन मिला है इसी से संतुष्ट हो और लोभ को छोड़ो अपना। दरिद्र ब्राह्मण घरे जे पहला मुस्ते कन्न, यहाँ ते संतुष्ट हो छाड़ लोभ है मन। नित्यानंद उत्तर दिया, मैं जो भी हूँ आपने मुझे बुलाया है, अतएव अब मैं जितना खाना चाहूँ उतना तो दो। नित्यानंद बले जाबे कहले निमंत्रण, ताते जिते ताते देते चाहे जते करिए भोजन। अद्भुत आचार्य को नित्यानंद की बातें सुनने के लिए अवसर मिला कि वे प्रयास करें, अतः वे बोले, सुने नित्यानंदिर कथा ठाकुर अद्वैत, कहे न ताहारे के छुपाई या पीरित। अद्भुत आचार्य ने कहा, आप तो भ्रष्ट सन्यासी हैं, अपने पेट भरने के लिए सन्यास ग्रहण किया है। मैं समझ गया आपका केवल काम है ब्राह्मणों को कष्ट देना। भ्रष्ट अवधूत तुम्ही उधर भरीते, सन्यास ले आच बुझी ब्राह्मण दंडिते। ब्राह्मण को तंग करने के लिए सन्यास लिया है तुमने तो। नित्यानंद प्रभु पर लांछन लगाते हुए अद्वैत आचार्य ने कहा, आप 10-20 मन चावल खाने वाले हो और मैं ठहरा निर्धन ब्राह्मण, भला इतना चावल कहाँ से लाऊंगा। तुम्हें खेते पार 10-20 माने अन्न है, हमें तहाँ कहाँ पाव दरिद्र ब्राह्मण। जो कुछ आपको दिया है वो मुट्ठी भर चावल क्यों ना हो, इसे खाओ और उठ जाओ। अपना पागल मत, पागलपन मत दिखलाओ, और जूठन इधर उधर नहीं फेंकना, जूठन भी नहीं फेंकना इधर उधर। जे पाया छे मुष्टिक अन्न, तहा खाया उठे, पागल आमी ना करी है ना छाड़ाई और झूठ है। इस तरह नित्यानंद और चैतन्य ने भोजन ग्रहण किया, अद्वैत आचार्य से परिहास किया। एक बोलता है कि बहुत ज्यादा है, दूसरा बोलता बहुत कम है। श्री चैतन्य को जितनी तरकारियां परोसी गई थी उनमें से हर एक को आधा आधा खाकर छोड़ा। श्री चैतन्य आधा आधा खा करके छोड़ रहे हैं। हे मत हास्य रसे करे न भोजन, अर्धे अर्धे खाइया प्रभु छाड़े न व्यंजन। जब पात्र की आधी तरकारी समाप्त हो जाती तो अद्वैत आचार्य फिर से उसे पूरा भर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु आधा खाते हैं, अद्वैत आचार्य उसको भी पूरा भर देते हैं। इस तरह जो है महाप्रभु आधा व्यंजन समाप्त करते, अद्वैत आचार्य पुनः पुनः उसे पूरा भर देते हैं। से व्यंजन आचार्य पुनः करे न पूरन, हे मध्य पुनः पुनः परिवेश व्यंजन। दोनों को तरकारी से भरकर अद्वैत आचार्य ने उनसे प्रार्थना की कि और खाओ। श्री चैतन्य ने कहा, मैं और कितना खा सकता हूँ। दोना व्यंजने भरी करे न प्रार्थन प्रभु बले न आरकत करे वे भोजन। अद्भुत आचार्य का कृपा करके मेरे द्वारा परोसे अन्न को छोड़िए नहीं। अब जो भी मैं दे रहा हूँ उसका आप आधा खाकर छोड़ सकते हो। आचार्य कहे जेदि याची ताहा ना छाड़ी बा एखाने जेदि तार अर देखे काई बा। इस तरह विविध प्रकार से अन्न विनय करके अद्भुत आचार्य ने श्री चैतन्य नित्यानंद को भोजन कराया। इस प्रकार श्री चैतन्य ने अद्भुत आचार्य की सारी इच्छाएं पूरी करी। नाना जतन ध्यान प्रभु रे करायेल भोजन आचार्य इच्छा प्रभु करे ले पूरन। नित्यानंद ने पुनः परिहास में कहा मेरा पेट अभी भरा नहीं है। मेरा पेट अभी भरा नहीं है, अपना भोजन ले जाओ, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं खाया। नित्यानंद ने कहा हमार पेट न भरे लये जाए तोर अन्न किछु न खाए। कुछ नहीं खाया मैंने, ले लो। ये क्या कर, नित्यानंद प्रभु ने एक मुट्ठी चावल लिया उसे फर्श पर उनके आगे फेंक दिया। मानो गुस्सा हो रहे हो, हंसने के लिए और गुस्सा दिखा रहे हैं है? और फेंक दिया, मैंने कुछ नहीं खाया है? ले लो अपने वापस, मेरा पेट नहीं भरा है। ये तो भले एक ही ग्रास भात हाथे लैया ओझाली फेले ले आगे जे ने क्रुद्ध हैया। जब फेंके चावलों के दो चार दाने अद्भुत आचार्य के शरीर पर लगे तो उस चावल लगे शरीर से तरह तरह से नृत्य करने लगे। अद्भुत आचार्य को बहुत आनंद आया, उन्होंने जूठन उनके शरीर में डाला ना तो अद्भुत आचार्य को बहुत आनंद आया तो नृत्य करने लगे। भात दोई चारी लागे आचार्य रे अंगे भात अंगे लैया आचार्य नाचे बहु रंगे। जब नित्यानंद द्वारा फेंके गए चावलों का अद्भुत आचार्य के शरीर से स्पर्श हुआ तो आचार्य ने नित्यानंद द्वारा फेंके गए उस उच्छिष्ट के स्पर्श से अपने आप को परम पवित्र माना और वे नृत्य करने लगे। अवधूतेर जूठा लागिल मोर अंगे परम पवित्र मोर कैला ए ढंगे। अद्भुत आचार्य ने हंसी हंसी में कहा हे नित्यानंद मैंने आपको आमंत्रित किया उसका फल मुझे ये मिला। आपकी कोई जाति और कुल तो है निश्चित है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं तुम किस जाति हो क्यों किस कुल के हो और स्वभाव से तो पागल हो। तोरे निमंत्रण करी पाइन उतार फल तोरे जाति कुल नाही सहजे पागल। तुमको निमंत्रण करने का ये फल मुझे मिला है कि तुम्हारी जाति कुल तो कुछ है नहीं है, पागल ही हो एकदम, और मुझे भी अपने अपने समान पागल बनाने के लिए मेरे ऊपर अपना जूठन फेंक दिया है। और इसका तुम्हें डर भी नहीं हुआ कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इतना पवित्र ब्राह्मण हूँ, मुझे अशुद्ध किया तुमने। आप नारस समय मोरे करी बार तरे झूठा दिले विप्र बलि भय ना करी ले। तुम्हें डर भी नहीं लगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, अपना जूठन फेंक दिया मेरे ऊपर। नित्यानंद ने उत्तर दिया ये कृष्ण का उच्छिष्ट है, यदि इसे जूठन समझते हो तो आपने अपराध कर दिया, तो कृष्ण का प्रसाद है। नित्यानंद बोले ए कृष्ण रे प्रसाद या के जूठा कहिले तुमने कहिले अपराध। अब तुमने तो अपराध किया। नित्यानंद ने आगे कहा यदि आप 100 सन्यासियों को अपने घर बुलाकर भरपेट भोजन कराएं तब अपराध दूर होगा आपका। ये अपराध हो गया आपका, इसको आपने क्या कहा जूठा कहा। इसके बदले में आप क्या करो 100 सन्यासियों को भरपेट भोजन खिलाओ। मेरा तो पेट भरा नहीं है। सत्य के सन्यासी यदि करा है भोजन तबे ए अपराध है बेखंडन। अगर आचार्य उत्तर दिया अब मैं कभी किसी सन्यासी को नहीं बुलाऊंगा, एक सन्यासी को बुला करके ये फल मिला है। क्योंकि एक सन्यासी ने मेरे सारे ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म को कलुषित कर दिया है। आचार्य कहे ना करीब सन्यासी निमंत्रण सन्यासी ना से ले मोर सब स्मृति धर्म। इसके बाद आचार्य ने दोनों प्रभुओं के हाथ और मुंह धुलवाए, उन्हें उत्तम सैया पर ले जाकर विश्राम कराने के लिए लिटाया। ये ते बलि दुई जने कराइल आचमन उत्तम सैया ते लैया कराइल सयन। अद्भुत आचार्य ने दोनों जनों को लौंग इलायची के साथ तुलसी मंजरी का सेवन कराया, इस तरह उनके मुखों में सुगंध आने लगी। लवंग इलाची बीज उत्तम रस से वास है, तुलसी मंजरी सहदिल मुख वास है। आचार्य ने दोनों प्रभुओं के शरीरों पर चंदन का लेप किया, फिर उनके वक्षस्थलों पर अत्यंत सुगंधित फूलों की मालाएं पहनाई। सुगंधी चंदन लिप्त कैला काले बर सुगंधी पुष्पमाला आने दिले हृदय ऊपर। जब महाप्रभु सैया पर लेट गए तो अद्वैत आचार्य उनके पांव दबाना चाहते थे, किंतु महाप्रभु को संकोच हो रहा था, अतः वे अद्वैत आचार्य से इस प्रकार बोले। अद्वैत आचार्य पैर दबाना चाहते ना, आचार्य का रीते चाहे पाद संवहन संकोचित है या प्रभु बाले ने बचन। श्री चैतन्य ने कहा, अद्वैत आचार्य आपने मुझे बहुत नाच नचाया, अब आप ऐसा करना छोड़ दीजिए, मुकुंद हरिदास के साथ जाकर भोजन कीजिए। उन्होंने भी भोजन नहीं किया, भी भोजन करो। बहुत नाचाई ले तो मैं छाड़ नाचान मुकुंद हरिदास ले कर है भोजन। तब अद्वैत आचार्य ने मुकुंद हरिदास के साथ प्रसाद ग्रहण किया, उन तीनों ने भरपेट इच्छानुसार भोजन किया। तभी ता आचार्य संगे ले यादो ये जने करी ले इच्छा है भोजन जे आछे ले मने। जब शांतिपुर के लोगों ने सुना कि श्री चैतन्य वहाँ ठहरे हैं, तो वे तुरंत अपने उनके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आए। शांतिपुर लोग सुने प्रभु आगमन देखिते अला लोक प्रभु रे चरण। सारे लोग अत्यंत हर्षित होकर उच्च स्वर से भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण करने लगे। वे महाप्रभु का सौंदर्य देखकर आश्चर्यचकित हो गई। हरि हरि बले लोग आनंदित हैया चमत्कार पायल प्रभु सौंदर्य देखिया। उन्होंने श्री चैतन्य के अत्यंत गौर वर्ण शरीर और उनकी उज्जवल कांति को देखा, जो सूर्य के तेज को परास्त करने वाली थी। इसे भी बढ़कर उनके केसरिया वस्त्रों का सौंदर्य था, जो उनके शरीर पर झलमल कर रहे थे। गौर देह कांति सूर्य जिन या उज्ज्वल अरुण वस्त्र कांति ताहे करे झलमल। लोग बड़े हर्ष के साथ आते और जाते थे, कोई गिनती नहीं थी, सूर्यास्त तक वहां कितने लोग एकत्र हुए। ऐसे जाए लोग हर्ष नाही समाधान लोके रे संगटे दिन हैला अवसान। शाम होते ही अद्वैत आचार्य ने सामूहिक कीर्तन प्रारंभ किया, वे स्वयं भी नृत्य करने लगे और महाप्रभु उनका नृत्य देखने लगे। संध्या ते आचार्य आरंभ ले संकीर्तन आचार्य नाचे ने प्रभु करे ने दर्शन। जब अद्वैत आचार्य नाचने लगे तो नितंत प्रभु उनके पीछे पीछे नाचने लगे। हरिदास ठाकुर भी हर्षित होकर उनके पीछे पीछे नाचने लगे। नित्यानंद को साई बोले आचार्य धारिया हरिदास पाछे नाचे हरे से तहैया। अद्वैत आचार्य ने कहा, हे सखाओ मैं क्या कहूँ, आज मुझे सर्वोच्च दिव्य आनंद प्राप्त हुआ है। अनेक अनेक दिनों के बाद श्री कृष्ण मेरे घर में पधारे हैं। कि कहे मेरे सखी आज आनंद हो रहे चेरे देने माधव मंदिरे मोरे। अद्वैत आचार्य संकीर्तन टोली का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने इस श्लोक को बड़े हर्ष से गाया। उनके शरीर में पसीना और कपकपी रोमांच अश्रु गर्जन हुंकार ये सब होने लगा शरीर में। हे पद गाओ अय्या हर्ष करे नर्तन स्वेद कम विपुल काश्रु हुंकार गर्जन। नाचते हुए अद्वैत आचार्य चक्रकार घूमने लगते, श्री चैतन्य के चरण कमल पकड़ लेते, फिर भी उनसे इस प्रकार बोलते। फिरी फिरी कभु प्रभुर धरे ने चरण चरण धरे या प्रभु रे बले ने बचन। अद्वैत आचार्य कहने लगे, आप बहुत दिनों तक बहकाकर मुझसे बचते रहे, अब आप मेरे घर आए हैं, अब मैं आपको बांध कर रखूंगा। अनेक दिन तुम्हें मोरे बेड़ाई ले भांडिया घरे ते पाया छी एबे राखे बे बांधिया। आपको मैं क्या करूंगा, अब बांध करके रखूंगा। कौन कह रहे हैं, अद्वैताचार्य कह रहे हैं। इस तरह कहते हुए उस रात को अद्वैताचार्य ने बड़े आनंद के साथ 3 घंटे तक संकीर्तन किया और सारा समय नाचते रहे। एत बलि आचार्य आनंद करे ने नर्तन प्रहरे के रात्रि आचार्य कैला संकीर्तन। जब अद्वैत आचार्य इस प्रकार नृत्य कर रहे थे, तब चैतन्य को कृष्ण के प्रेम की अनुभूति हुई, उनके विरह के कारण प्रेम की ज्वाला तीव्र हो गई। प्रेमेर उत्कंठा प्रभुर नाही कृष्ण संग विरह बाड़े ले प्रेम ज्वाला रहता रंग। भावोल्लास से व्याकुल होकर श्री चैतन्य सहसा भूमि पर गिर पड़े, ये देखकर अद्वैत आचार्य ने नृत्य करना बंद कर दिया। तो कैसी दुर्घटना हो गई, व्याकुल हैया प्रभु भूमि ते पड़ीला गोसाई देखिया आचार्य नृत्य संभारीला। जब मुकुंद ने चैतन्य के भावोल्लास को देखा तो वे महाप्रभु के मनोदशा को समझते हुए उनके भाव को पुष्ट करने वाले अनेक पद गाने लगे। प्रभुर अंतर मुकुंद जाने भाल मते भावेर सदृश पद लागी लगाई ते। आचार्य ने चैतन्य को उठाया जिससे वे नृत्य कर सके, किंतु मुकुंद द्वारा गाए गए पदों को सुनकर महाप्रभु को उनके शारीरिक लक्षणों के कारण पकड़े नहीं रखे जा सके। आचार्य उठायल प्रभु के करी ते नर्तन पद सुन प्रभु रंग न जाए धारण। उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, उनका सारा शरीर कांपने लगा, रोमांच हुआ, उनका शरीर पसीना पसीना हो गया, वाणी अवरुद्ध हो गई, कभी उठ खड़े होते, कभी गिर जाते, कभी रोदन करने लगते। अश्रु कंपुलक स्वेद गनगन बचन छड़े उठे छड़े पड़े छड़े के रोदन। मुकुंद गाने लगे, हे प्राण प्रिय सखी मेरे साथ क्या क्या नहीं बीता, कृष्ण के प्रेम रूपी विष के प्रभाव से मेरा शरीर और मन दोनों बहुत पीड़ित हैं। हा हा प्राण प्रिय सखी किना हैला मोरे कानू प्रेम विष मोरे तानु मन जरे। मेरी भावना ऐसी है, मेरा मन दिन रात जलता है और मुझे तनिक भी आराम नहीं मिलता। यदि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ मैं श्री कृष्ण से मिलने जा सकूं तो मैं तुरंत वहाँ उड़ करके चली जाऊं। रात्रि देने पोड़े मन सोयास्ती न पाऊं जहाँ गेले कानू पां तहाँ उड़ी जाऊं। मुकुंद ने इस पद को अत्यंत मधुर स्वर में गाया, किंतु जो ही श्री चैतन्य ने ये पद सुना उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। हे पद गाए मुकुंद मधुर सुस्वरे सुनिया प्रभु रे चित्त अंदरे बिदरे। दिव्य भावों के लक्षण निराशा खिन्नता हर्ष चपलता गर्व दीनता महाप्रभु के हृदय में एकदम से उठे। निर्वेद विषाद हर्ष चापल्य गर्व दन प्रभु रे सहित युद्ध कार्य भावशन। श्री चैतन्य का सारा शरीर भाव के लक्षणों से जर्जर होने लगा, वे तुरंत ही भूमि पर गिर गए, उनकी सांस रुक गई। जरे जरे हैले प्रभु भावे रे प्रहारे भूमि ते पड़े ले श्वास नाहे के शरीरे। महाप्रभु की दशा देखकर सारे भक्त चिंतित हो उठे, महाप्रभु सहसा उठे और गर्जना करने लगे। देखिए चिंतित हैला जत भक्त गण अचंबित उठे प्रभु करी या गर्जन। महाप्रभु ने उठकर कहा, बोलते रहो, इस तरह वे आनंद विभोर होकर नाचने लगे, कोई भी उनके इस भाव की तरंगों को नहीं जान सका। भले 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 नाचे आनंदे बेबल भोजन न जाए भाव तरंग प्रबल। नित्यानंद श्री चैतन्य के साथ साथ चलने लगे जिससे वे गिरे नहीं। अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर नाचते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। नित्यानंद संगे बोले प्रभु के धरिया आचार्य हरिदास बोले पाछे ता नाचिया। इस तरह महाप्रभु कम से कम 3 घंटे तक नृत्य करते रहे, कभी कभी उनमें हर्ष विषाद और अन्य भावों की तरंगे दिखाई देती थी। हे मत प्रहारे के नाचे प्रभु रंगे कबू हर्ष कबू विषाद भावे रे तरंगे। महाप्रभु 3 दिन से उपवास कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने पर्याप्त भोजन किया, अतः जब वे नाचे ऊंचा कूदे तो उन्हें थोड़ी थकान हुई। 3 दिन उपवास करिया भोजन उदंड नृत्य ते प्रभु हैला परिश्रम। किंतु प्रेम में पूर्णता मग्न होने के कारण महाप्रभु थकान का अनुभव नहीं कर रहे थे, फिर भी नित्यानंद ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें नाचने से रोक दिया। तब उतना जाने श्रम प्रेमाविष्ट हैया नित्यानंद महाप्रभु के राखिल धरिया। यदि भी महाप्रभु थके थे किंतु नित्यानंद ने उन्हें पकड़कर शांत किया। उस समय अद्वैताचार्य ने कीर्तन समाप्त कर दिया और तरह तरह की सेवाएं करके महाप्रभु को विश्राम के लिए शयन करवाया। आचार्य गोसाई तबे राखिल कीर्तन ना सेवा करी प्रभु के करायल शयन। अद्वैताचार्य ने इस प्रकार लगातार 10 दिनों तक शाम के समय भोजन और कीर्तन का आयोजन किया। वे बिना किसी परिवर्तन के महाप्रभु की इस तरह सेवा करते रहे 10 दिन तक रोज शाम को। हे मत 10 दिन भोजन कीर्तन एक रूप करे करे प्रभु रे सेवन। प्रातःकाल चंद्रशेखर सची माता को उनके घर से पालकी में बिठाकर अनेक भक्तों के समेत लाए। प्रभाते आचार्य रत्न दुलाए चढ़ैया भक्तगण संगे अयला सची माता लैया। इस प्रकार नदी नगर के सारे लोग जिनमें स्त्रियां बालक और वृद्ध थे सब आए, विशाल भीड़ एकत्र हो गई। नदी नगरे लोग स्त्री बालक वृद्ध सबे लोग आइला हाइले संकट समृद्ध है। प्रातःकाल शौच आदि कृत्यों से निवृत्त होने के बाद जब महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे थे तभी सची माता के साथ लोग अद्वैत आचार्य के घर में आए। प्रातः कृत्य करे करे नाम संकीर्तन सची माता लैया आइला अद्वैत भवन। जो ही सची माता वहां पहुंची चैतन्य उनके चरणों में डंडे के समान गिर गए, माता के चरणों में दंडे के समान गिर गए। सची माता महाप्रभु को गोद में लेकर के रोने लगी। रात में आधी रात में उठ करके भाग गए थे, अब माता का दर्शन किया है तो माता गोद में लिटा करके रो रही है। सची आगे पड़ेला प्रभु दंड पत्ते हैया कांदेते लागीला सची कोले उठाइया। एक दूसरे को देखकर दोनों बेहवल होटे महाप्रभु के सिर को केस विहीन देखकर सची माता विक्षुब्ध हो गई, मुंडित सिर है। दोहारे दर्शन दोहे हैला बेहवल कैसे न देखी सची हैला विकल। इसने बस महाप्रभु के शरीर पर हाथ फेरने लगी, कभी वे मुंह चूमती ध्यान से देखने का प्रयत्न करती किंतु अस्त्र पूरित नेत्र होने के कारण देख नहीं पाती, अपने पुत्र को देख नहीं पाती है, आंसू आ रहे। अंग मुछे मुखे चुंबे करे निरीक्षण देखी ते न पाए अश्रु भारी लेना यन। ये समझकर किसी चैतन्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है सची माता ने रोते हुए चैतन्य से कहा, मेरे दुलारे तुम अपने बड़े भाई विश्वरूप की तरह निष्ठुर ना बनो। तुम्हारे बड़े भाई ने संन्यास ले लिया है कभी वापस नहीं आया, तुम अपने बड़े भाई की तरह कठोर मत बनो। कांदिया का हे न सची बाछारे ने माई विश्वरूप समय न करी है ने ठुराई। सची माता ने कहा, विश्वरूप ने संन्यास लेने के बाद फिर मुझे कभी दर्शन नहीं दिया, तुम उसी तरह करोगे तो तुम समझ लो मेरी मृत्यु हो जाएगी। सन्यासी है या पुनः ना दे ले दर्शन तुम्हें तय से कैले मोरे हरि भे मरण। महाप्रभु उत्तर दिया, हे माता सुनो, ये शरीर आपका है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। कांदिया पले ने प्रभु सुन मोर आई तुम्हारा शरीर है मोर के छुनाई। ये शरीर आपने पाला पोसा है, ये आपसे ही उत्पन्न है, करोड़ों जन्मों में भी ये ऋण मैं चुका नहीं सकता हूँ। तुम्हारे पाले ते देह जन्म तो माही थे कोटि जन्म तुम्हारे ऋण ना पारी शोधी थे। जाने अनजाने मैंने संन्यास स्वीकार कर लिया है फिर भी मैं आपसे कभी विमुख नहीं होऊंगा। जाने वाना जाने कैला यद्यपि संन्यास है तथापि तुम्हारे कबू नाही वे उदास है। हे माता आप मुझे जहाँ भी रहने के लिए कहोगी मैं वहीं रहूँगा और आप जो आज्ञा दोगी उसका मैं पालन करूँगा। भगवान कह रहे हैं, लो माता तुम्हें जहाँ कहा आमी तहाँ ही रहे, तुम्हें जय आज्ञा करे सही तकरीम। ये कहकर महाप्रभु ने अपनी माता को बारंबार प्रणाम किया। सची माता ने भी प्रसन्न होकर उन्हें बारंबार अपनी गोद में लिया। ये ते बाली पूना पूना करे नमस्कार तुष्टे है या आए को लेकर बार बार। तब अद्वैत आचार्य सची माता को घर के भीतर ले गए, महाप्रभु तुरंत ही सारे भक्तों से मिलने के लिए तैयार हो गए। तब आई लैया आचार्य गेला अभ्यंतर भक्तगण मिले थे प्रभु हैला सत्वर। महाप्रभु एक एक करके सारे भक्तों से मिले और हर एक के मुख को देखकर उन्होंने दृढ़ता पूर्वक आलिंगन किया सबका। एक एक मिले प्रभु सब भक्तगण सवार मुख देखी करे दृढ़ आलिंगन। यद्यपि भक्तगण महाप्रभु के केसों को ना देखकर दुखी थे फिर भी उनके सौंदर्य को देखकर परम सुख प्राप्त कर रहे थे। कैसे न देखी या भक्त ज्यादा भी पाए दुख सौंदर्य देखे थे तब वो पाए महासुख। श्रीवास रामाई विद्यानिधि गदाधर गंगादास वक्रेश्वर मुरारी शुक्लांबर बुद्धिमंत खान नंदन श्रीधर विजय वासुदेव दामोदर मुकुंद संजय अन्य जितने भी नाम मैं गिना सकूं सभी नवद्वीप के निवासी वहां आए और महाप्रभु सब पर कृपा दृष्टि डालते हुए मुस्कुराते हुए उनसे मिले। हर कोई हरि नाम का कीर्तन करते हुए नाच रहा था। इस तरह अद्वैत आचार्य का निवास बैकुंठपुरी बन गया। आनंद ना चाहे सबे बलि हरि हरि आचार्य मंदिर हैला श्री वैकुंठपुरी। नवद्वीप के अतिरिक्त आसपास के अन्य विभिन्न गांवों के भी लोग चैतन्य के दर्शन के लिए आए। जत लोग आयल महाप्रभु के देखी ते नाना ग्राम हई दे आर नवद्वीप हई ते। अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु का दर्शन करने के लिए निकट के गांवों से आए हर व्यक्ति को, विशेषतया नवद्वीप के निवासियों को कई दिनों तक रहने के लिए स्थान और सभी प्रकार की भोजन सामग्री प्रदान की। उन्होंने हर बात का अच्छी प्रकार से प्रबंध किया। अद्वैत आचार्य का भंडार अक्षय था, जितनी भी सामग्री का उपयोग करते उतनी सामग्री और प्रकट हो जाती, कोई कम नहीं हो रही। इतने आदमी आ रहे हैं, सबको ठहराना और भोजन कराना और तभी सामग्री कम नहीं होती। जिस दिन से सची माता अद्वैत आचार्य के घर में आई वही भोजन पकाती थी और चैतन्य सारे भक्तों के साथ भोजन करते थे, माता ही भोजन बनाती। दिन में जितने सारे लोग आते थे चैतन्य का दर्शन करते थे, अद्वैत आचार्य के प्रेम पूर्ण व्यवहार को देखते थे। रात्रि में उन्हें महाप्रभु का नृत्य देखने और कीर्तन सुनने का अवसर प्राप्त होता था। कीर्तन करते से महाप्रभु में सभी प्रकार के दिव्य लक्षण प्रकट हो जाते थे, स्तंभित होते, कंपित होते थे, रोमांचित होते थे, उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती थी, आंसुओं के साथ प्रलय होती थी। महाप्रभु पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ते थे, ये देखकर उनकी माता सची रोने लगती थी। सची माता ने सोचा इस तरह भूमि पर गिरने से निमाई का शरीर चूर चूर हो रहा है, चीत्कार कर उठी हाय और फिर भगवान विष्णु से वर मांगने लगी। हे प्रभु, मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक आपकी जो भी सेवा की है उसके बदले में कृपा करके मुझे ये वरदान दीजिए, जब जब निमाई धरती पर गिरे तब तब उसे पीड़ा का अनुभव ना हो। माता सची भगवान से प्रार्थना कर रही है। इस तरह चैतन्य के प्रति वात्सल्य प्रेम से अभिभूत होने पर सची माता हर्ष भय दीनता से बेहवल हो गई। अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को भोजन देते थे, अतः श्रीवास ठाकुर आदि अन्य भक्ति भी उन्हें भिक्षा देने और भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। महाप्रभु के अन्य भक्तों द्वारा ऐसे प्रस्तावों को सुनकर सची माता ने भक्तों से कहा, अब मुझे निमाई के दर्शन पाने के कितने अवसर मिलेंगे। सची माता ने कहा, जब तक आप लोगों की बात है आप लोग निमाई से अन्यत्र भी अनेक बार मिल सकते हैं, किंतु मेरे लिए उससे दोबारा मिलने की क्या संभावना है, मुझे तो घर पर रहना होगा, सन्यासी कभी अपने घर वापस नहीं आएगा। इसलिए क्या करो, सची माता ने भक्तों से दान मांगा, जब तक चैतन्य अद्वैत आचार्य के घर में है तब तक वे उन्हें भोजन प्रदान करेंगे। सची माता ने कहा कि जब तक चैतन्य है तब तक मैं भोजन बना लूँ और खिला लूँ, है ना, तुम लोग तो बाद में भी मिलते रहोगे, लेकिन ये तो घर में आएगा नहीं कि संन्यास ले चुका है, है ना। सची माता का ये निवेदन सुनकर सारे भक्तों ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा कि सची माता की इच्छा जैसी है वैसा ही हो। श्री चैतन्य ने अपनी माता की उत्सुकता देखी तो कुछ विचलित हुए, अतः उन्होंने उपस्थित सारे भक्तों को एकत्रित किया और उनसे बोले। चैतन्य ने सबको बताया, मैं आप लोगों की आज्ञा लिए बिना वृंदावन जाना चाहता था, किंतु बाधा उत्पन्न हुई और मुझे लौटना पड़ा। हे मित्रों, यद्यपि मैंने अचानक ही संन्यास ग्रहण कर लिया है, किंतु मैं जानता हूँ कि तब भी मैं आप लोगों से कभी उदासीन नहीं होऊंगा। हे प्रिय मित्रों, जब तक मैं जीवित रहूंगा आप लोगों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं अपनी माता को छोड़ पाऊंगा। संन्यास स्वीकार करने के बाद सन्यासी का यह धर्म नहीं होता कि अपने जन्म स्थान में रहे, अपने कुटुंबियों से घिरा रहे। अतः ऐसा कुछ प्रबंध करो जिससे मैं आप लोगों को ना छोड़ूं और लोग मुझ पर सन्यास लेने के बाद संबंधियों के साथ रहने का लांछन भी ना लगाएं। दोनों बातें होना चाहिए, क्या आप लोगों को ना छोड़ूं और दुनिया वाले लांछन भी ना लगाएं कि सन्यासी होकर के अपने संबंधियों के साथ रहता है। महाप्रभु के वचन सुनकर अद्वैत आचार्य आदि सारे भक्त सची माता के पास आए। जब उन्होंने चैतन्य के वचन कहे तो विश्व की माता सची कहने लगी। सची माता ने कहा, यह मेरे लिए परम सुख की बात होगी यदि निमाई यहाँ रहे, किंतु यदि कोई इसकी निंदा करे तो मेरे लिए दुख की बात होगी। निमाई यहाँ रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग तो निंदा करेंगे। तो माता बोली कि ये भी मैंने चाहिए थी। सची माता ने कहा, अच्छा विचार है, मेरे विचार से यदि निमाई जगन्नाथपुरी में रहे तो हम में से किसी को छोड़ेगा भी नहीं और उसी के साथ साथ सन्यासी के रूप में अलग भी रह सकता है, इस तरह दोनों उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। क्योंकि जगन्नाथपुरी और नवद्वीप का निकट संबंध है, इसलिए नवद्वीप के लोग जगन्नाथपुरी आते जाते रहते हैं, जगन्नाथपुरी के लोग नवद्वीप आते रहते हैं, इस आने जाने से चैतन्य के समाचार मिलने में सुविधा होगी, इस तरह मुझे इसके समाचार मिलते रहेंगे, चैतन्य का समाचार मिलता रहेगा। तुम सारे भक्त आ जा सकोगे, कभी कभी वो भी गंगा स्नान करने के लिए आ सकता है। मुझे अपने सुख दुख की चिंता नहीं है, चिंता केवल इसके सुख की है, मेरे पुत्र के सुख की। मैं इसके सुख को ही अपना सुख मानती हूँ। सच्ची माता के वचन सुनकर सारे भक्तों ने माता की स्तुति की, उन्हें विश्वास दिलाया कि उनका आदेश वेदों के आदेश के समान है। हा? माता का आदेश। सारे भक्तों ने चैतन्य को सच्ची माता के निर्णय की सूचना दी। ये सुनकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। श्री चैतन्य ने नवदीप और अन्य नगरों से आए सभी भक्तों का सम्मान किया और इस प्रकार कहा, हे मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोग मेरे घनिष्ठ मित्र हो, अब मैं आप सबसे एक भिक्षा मांगता हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। श्री चैतन्य ने सबसे प्रार्थना की कि वे घर लौट जाएं और वहाँ नाम कीर्तन प्रारंभ कर दें। उन्होंने ये भी प्रार्थना की कि कृष्ण की पूजा करें और पवित्र नाम का कीर्तन करें, उनके पवित्र लीलाओं की चर्चा करें। भक्तों को इस प्रकार उपदेश देने के बाद श्री चैतन्य ने जगन्नाथपुरी जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे बीच बीच में आते रहेंगे और उनसे बार बार मिलते रहेंगे। इस तरह श्री चैतन्य ने सभी भक्तों का सम्मान करते हुए और मुस्कुराते हुए सबको विदा किया। सभी भक्तों से घर लौट जाने की विनती करने के बाद महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी जाने का निश्चय किया। उस समय हरिदास ठाकुर क्रंदन करते हुए करुण वचन बोले। हरिदास ठाकुर ने कहा, ये तो ठीक है कि आप नीलाचल जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, किंतु मेरी क्या गति होगी, मैं तो नीलाचल नहीं जा सकता हूँ। क्यों? अत्यंत नीच होने के कारण मैं आपके दर्शन नहीं पा सकूंगा, मैं अपने पापी जीवन को किस प्रकार धारण करूंगा। महाप्रभु ने हरिदास से कहा, कृपया अपनी दीनता को नियंत्रित कीजिए, आपकी दीनता देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आश्वस्त किया कि भगवान जगन्नाथ के सामने निवेदन करेंगे, निश्चय उन्हें जगन्नाथपुरी ले चलेंगे। इसके बाद अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य से अनुनय विनय की कि वे दो चार दिन और रहने की कृपा करें। चैतन्य कभी भी अद्वैत आचार्य की प्रार्थना का उल्लंघन नहीं करते थे, अतएव उनके घर पर रुके रहे। उन्होंने जगन्नाथपुरी के लिए तुरंत प्रस्थान नहीं किया। महाप्रभु के निर्णय से अद्वैत आचार्य, सची माता और सारे भक्त बहुत प्रसन्न हुए। अद्वैत आचार्य रोज महान उत्सव करते रहे। दिन के समय सारे भक्त कृष्ण कथाओं की चर्चा करते, रात में अद्वैत आचार्य के घर सामूहिक कीर्तन महोत्सव मनाया जाता। माता सची बड़े आनंद से भोजन पकाती और भक्तों से श्री चैतन्य बड़े आनंद के साथ प्रसाद ग्रहण करते थे। इस तरह अद्वैत आचार्य के सारे ऐश्वर्य, उनकी श्रद्धा, भक्ति, घर, धन, सब कुछ श्री चैतन्य की सेवा में पूरी तरह से लगे। सची माता का आनंद निरंतर अपने पुत्र का मुख देखकर और भोजन कराकर बढ़ता रहा और पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। इस तरह सारे भक्त अद्वैत आचार्य के घर पर मिले और उन्होंने महोत्सव में एक साथ कुछ दिन बिताए। अगले दिन चैतन्य ने सभी भक्तों से अपने अपने घर लौट जाने की विनती की। श्री चैतन्य ने सबसे अपने अपने घरों में भगवान नाम का कीर्तन करने के लिए कहा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनसे दोबारा अवश्य मिलेंगे। चैतन्य ने उनसे कहा, अभी कभी तुम लोग जगन्नाथपुरी आओगे और कभी मैं गंगा स्नान करने आऊँगा। श्री अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के साथ जाने के लिए चार लोगों को भेजा। इनके नाम थे नित्यानंद, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त। चार लोगों को अपनी माता को सांत्वना देने के बाद महाप्रभु ने उनके चरण कमलों में प्रार्थना की। सभी प्रबंध होने के बाद चैतन्य ने अपनी माता की प्रदक्षिणा की और जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। इधर अद्वैत आचार्य के घर में ऊंचे स्वर से रोना प्रारंभ हो गया। श्री चैतन्य अप्रभावित थे, वे तेजी से चल दिए और अद्वैत आचार्य रोते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। विदाई दे दी लेकिन फिर भी रो रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं। जब अद्वैत आचार्य चैतन्य के पीछे पीछे कुछ दूर तक गए तो महाप्रभु ने हाथ जोड़कर उनसे याचना की और मधुर शब्द कहा। श्री चैतन्य ने कहा, कृपया सारे भक्तों को और मेरी माता को सांत्वना दीजिए, यदि आप ही व्यग्र हो जाएंगे तो फिर कोई जीवित नहीं रह पाएगा। ये कहकर श्री चैतन्य ने अद्वैत आचार्य का आलिंगन किया और उन्हें आगे चलने से मना किया, फिर निश्चिंत होकर जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। महाप्रभु चारों व्यक्तियों के साथ गंगा नदी के किनारे किनारे छत्र भोग के मार्ग से नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी की ओर चलने लगे। वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में जगन्नाथपुरी तक महाप्रभु के गमन का विस्तार से वर्णन किया है। जो व्यक्ति अद्वैत आचार्य के घर में महाप्रभु के कार्यकलापों को सुनता है, सुन रहे हैं सब लोग, सुन लीजिए, इतनी देर से जो सुन रहे हैं वो इस बात को सुन लीजिए। क्या? जो व्यक्ति अद्वैत आचार्य के घर में महाप्रभु के इस लीला को सुनता है उसे निश्चय ही तुरंत कृष्ण प्रेम रूपी धन प्राप्त होता है। अद्वैत ग्रह प्रभुर विलास सुने जय जन अचिरे मिले तारे कृष्ण प्रेम धन। हरि बोल। श्री रूप श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदा उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। तो बहुत सुंदर कथा हुई आज की जो प्यार संख्या थी 219 प्यारे थी। तो बाद में फिर मैंने प्यारे नहीं पढ़ा ताकि जल्दी इस कथा समाप्त हो जाए। हाँ, आपकी ओर से बोलिए।